हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आदित्य इस बात के लिए फिलहाल अपने अलावा स्वीटी या किसी और को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए स्वीटी की बात का जवाब दिया। आए थे तुम्हारे मम्मी पापा और उनके साथ हमारी प्यारी बुआ जी भी थीं, लेकिन तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है ना कि उन लोगों को मेरी याद कब आती है। आदित्य ने ये बात स्वीटी की तरफ देखते हुए कही, लेकिन वहां उसके साथ खड़े बाकी लोग भी उन दोनों की तरफ देखने लगे। उनमें से सबसे ज्यादा कन्फ्यूज नैना खड़ी थी। उसने स्वीटी की तरफ देखा। स्वीटी ने अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोली और काफी निराश होती हुई बोली, आई एम रियली सॉरी भैया, मुझे अच्छी तरह से पता है, जरूर पैसे की लालच ही उन्हें यहां तक खींच कर लाई होगी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हॉस्पिटल जैसी जगह को भी नहीं छोड़ेंगे वे लोग। उनका लालच बहुत आगे तक बढ़ गया है, बट आप प्लीज उन लोगों को कुछ भी मत देना, वे डिजर्व नहीं करते हैं। स्वीटी की बातें सुनकर आदित्य काफी तसल्ली से बोला, स्वीटी अच्छी बात है कि तुम भी उन लोगों की असलियत जानती हो, मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि क्या करना है, मैं अब तक उन लोगों को हैंडल करता आया हूँ, आगे भी कर लूंगा, और तुम इस बारे में टेंशन मत लो, बस अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो और अच्छी जगह पर रिप्लेसमेंट करवा लो। आदित्य की बातें सुनकर स्वीटी ने बताया, रिप्लेसमेंट नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट है, लेकिन अभी हम सबको एज ए इंटर्न ही काम मिलेगा, बट अभी मुझे पहले अपनी भाभी से मिलना है और ये सारी बातें हम घर पर करेंगे। बताइए भाभी घर कब आ रही हैं और हम सब पहले की तरह एक साथ कब से रहेंगे। आदित्य कुछ बोल पाता उससे पहले ही उनके पीछे से एक आवाज आई, बहुत जल्दी ही। वो आवाज सुनकर सभी ने पलटकर उस तरफ देखा। सुनैना को ट्रीट करने वाले मुख्य डॉक्टर चलते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। उनकी बात सुनकर आदित्य सबसे ज्यादा खुश हुआ और वो आगे आकर डॉक्टर से बोला, क्या सच में सुनैना पहले से ठीक है और हम उसे घर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी उसे अगर कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत है तो फिर हम उसे यहाँ पर रख सकते हैं, मैं बस चाहता हूँ कि वो जल्दी रिकवर हो और उसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आदित्य की बात का जवाब देते हुए डॉक्टर ने कहा, उनकी हालत में पहले से काफी सुधार है और अगर आप लोग चाहें तो कल सुबह ही मैं डिस्चार्ज पेपर तैयार करवा सकता हूं और आप उन्हें अपने साथ घर ले जा सकते हैं, लेकिन एक हफ्ते के बाद आपको फिर से चेकअप के लिए आना होगा और उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स आएंगी, लेकिन तब तक वो घर जा सकती हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर उन सभी की आंखों में खुशी की चमक नजर आई। स्वीटी और नैना दोनों एक साथ खड़ी थीं, एक दूसरे की तरफ देखते हुए दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। उसके बाद तुरंत ही नैना आगे आते हुए डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या हम दोनों अभी जाकर सुनैना से मिल सकते हैं? वैसे तो एक ही अलाउड है, लेकिन ये आईपी रूम है तो आई गेस एक साथ दो लोग जा सकते हैं पेशेंट से मिलने। डॉक्टर की परमिशन मिलते ही वे दोनों डॉक्टर को धन्यवाद कहकर तुरंत ही सुनैना से मिलने कमरे के अंदर चली गईं। वे दोनों काफी एक्साइटेड लग रही थीं। आदित्य उनकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और उसने उनके साथ जाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वो कुछ घंटे पहले ही सुनैना से मिलकर बाहर आया था। इसके अलावा अब उसे सुनैना को घर ले जाने की तैयारी भी करनी थी, तो वो उन सबके इंतजाम में लग गया। अगले दिन दोपहर, सुनैना आदित्य के साथ कार में बैठकर हॉस्पिटल से घर वापस आई। सुनैना बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से वहां के आसपास के बगीचे और पूरे घर को देख रही थी। आदित्य ने पहले ही गीता दी को उनका कमरा साफ करने के लिए कह दिया था। रवि वहां पहले से मौजूद था आदित्य की मदद के लिए और अरविंद के बॉडीगार्ड्स की पूरी टीम भी वहां तैनात थी, लेकिन नदीम और अरविंद वहां कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। वे वापस अपने सीक्रेट मिशन पर चले गए थे और हमेशा की तरह वहीं रहकर आदित्य की मदद कर रहे थे। सिक्योरिटी का इंतजाम पहले से काफी ज्यादा टाइट कर दिया गया था। पहले जहां सिर्फ दो या चार बॉडीगार्ड होते थे, अब वहां कम से कम एक दर्जन बॉडीगार्ड्स की पूरी टीम थी। गेट पर भी दो से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड थे। उस पूरी प्रॉपर्टी पर काफी ज्यादा लाइटिंग करवाई गई थी और वो पूरा घर और उसके आसपास का एरिया सिक्योरिटी कैमरों और माइक से कवर था, क्योंकि आदित्य इस बार किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, भले ही जिससे उसे खतरा है वो विराज अभी तक उसके ही कब्जे में है। लेकिन इस बारे में उसने सुनैना को अब तक कुछ भी नहीं बताया था और हॉस्पिटल से रवि के साथ मिलकर वो सुनैना को लेकर सीधा घर आ गया था। स्वीटी अभी अपने इंस्टीट्यूट में थी और वो शाम को ही वापस आएगी। नैना भी विवान के साथ सूट पर थी, उसे इस बारे में पता था, लेकिन वो भी इस वक्त सुनैना के साथ अपने घर नहीं आ पाई थी। सुनैना के सिर पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन बाकी वो पूरी तरह से ठीक थी। इतने दिनों के बाद घर वापस आकर वो काफी खुश और फ्रेश फील कर रही थी और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर आराम से लेटने के बाद सुनैना बोली, अब अच्छा लग रहा है घर वापस आकर और अब जल्दी ठीक हो जाऊंगी मैं आदि। उसकी बात सुनकर आदित्य भी उसके करीब आकर बिस्तर पर ही बैठ गया और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। फिर आगे हाथ बढ़ाकर उसने सुनैना के चेहरे पर आते हुए बालों को पीछे किया और बोला, हाँ मुझे पता था कि तुम घर आकर अच्छा फील करोगी, इसलिए जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि हम तुम्हें घर ले जा सकते हैं, मैं तुरंत ही इस बात के लिए राजी हो गया। लेकिन मुझे बस तुम्हारी फिक्र है, तुम्हें कहीं ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना, और तुम्हारी चोट। आदित्य को इस तरह अपने लिए फिक्रमंद देखकर सुनैना ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, ठीक हूं मैं, और वो इंजरी भी, और जितनी ठीक नहीं है वो भी ठीक हो जाएगी, तुम जो हो मेरे पास। इतना बोलते हुए उसने आदित्य के हाथों को पकड़कर अपने चेहरे के एकदम करीब कर लिया और फिर उसके हाथ पर हल्के से किस किया। तो आदित्य ने भी आगे बढ़कर सुनैना के माथे पर चूमा और कहा, देखो मैंने नर्स के लिए भी मना कर दिया है, इसलिए आप मेरी बात मानो और अभी चुपचाप रेस्ट करो, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें अभी प्रॉपर रेस्ट करने के लिए कहा है। बाकी मेडिसिन के टाइम मैं डिनर बनवा कर ले आऊंगा और खाना खाकर चुपचाप दवा खा लेना। आदित्य की सारी बातें सुनकर सुनैना ने एकदम सीरियस चेहरा बनाते हुए पूछा, ओके हबी, और कोई ऑर्डर? आदित्य ने भी उसी तरह सीरियस फेस बनाते हुए कहा, नहीं फिलहाल इतना ही, बाकी बाद में। आदित्य ने एकदम सीरियस फेस बनाकर ये बात बोली तो सुनैना को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई, और इस वक्त हंसते हुए वो काफी खुश थी, तो वो थोड़ा जोर से हंसने लगी तो उसे अपने सर के पिछले हिस्से में एक तेज दर्द महसूस हुआ और उसके मुंह से हल्की सी सिसकारी निकली, आ। उसे इस तरह देखकर आदित्य पैनिक हो गया और थोड़ा सा घबराते हुए बोला, क्या हुआ सुनैना? सुनैना तुम ज्यादा जोर मत डालो सिर पर और अभी लेट जाओ यहाँ पर। उसे समझ नहीं आया कि एकदम अचानक से क्या हुआ, क्योंकि अभी तो सुनैना एकदम ठीक थी और अब अचानक से उसके सिर में दर्द होने लगा, इसलिए उसने इस तरह से पूछा। दर्द होने की वजह से सुनैना ने हंसना बंद कर दिया तो उसका दर्द भी कुछ हल्का हो गया और वो आदित्य की बात का जवाब देते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, बस हल्का सा दर्द हुआ, शायद बैंडेज की वजह से, अभी चोट पूरी ठीक नहीं हुई है। आदित्य उसकी बात समझते हुए बोला, हाँ ठीक है मैं समझ गया, वो शायद हंसने की वजह से, सॉरी मैंने ऐसी बात बोली, बट। सुनैना ने अपनी पलके झपकाते हुए कहा, हंसाने के लिए तो सॉरी मत बोलो आदि, खुश हूं मैं, और तुम ठीक हो ना? वो हॉस्पिटल में कोई आया था शायद चाचा जी?
आदित्य ने उसके इस सवाल को टालते हुए कहा, अरे तुम उन लोगों के बारे में मत सोचो अभी, और वे बस ऐसे ही आए थे, तुम अभी अपना ख्याल रखो मेरे लिए प्लीज। सुनैना ने मुंह बनाते हुए उसे याद दिलाया, ओके मैं अभी नहीं पूछ रही, लेकिन तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना आदित्य, तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? कि मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे? सुनैना के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए आदित्य ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हाँ मुझे अपना प्रॉमिस अच्छी तरह से याद है और मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा, बट अभी मेरी प्रायोरिटी तुम हो, पहले तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, फिर मैं सारी प्रॉब्लम एक साथ ही तुम्हारे साथ शेयर करूंगा और तुम एक एक करके मुझे सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना। सुनैना उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, इसका मतलब प्रॉब्लम्स हैं अभी भी लाइफ में? आदित्य ने काफी लापरवाही से कहा, प्रॉब्लम्स का क्या है, वे तो हमेशा ही रहती हैं, कभी भी पूरी तरह से नहीं जाती, बट मेरी खुशी इसमें है कि तुम मेरे साथ हो सुनैना, और बस अब एकदम पहले की तरह हो जाओ, फिर अपना सारा काम संभालो, ये ऑफिस और बाकी का काम मुझसे नहीं देखा जाता अब। सुनैना ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए पूछा, क्यों तुम 70 साल के बूढ़े हो गए हो क्या, जो तुम्हारी रिटायर होने की उम्र है, और अपने बेटे बेटी से ऐसा बोल रहे हो? इतना बोलकर सुनैना दोबारा हंसने लगी तो आदित्य भी उसकी बात पर मुस्कुरा दिया, लेकिन फिर उसने इशारे से सुनैना को शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सुनैना फिर से जोर से हंसे और उसके सिर के पिछले हिस्से पर दबाव पड़े और उसे दर्द हो। सुनैना भी उसकी बात का मतलब समझ गई और एकदम से अपनी हंसी रोकते हुए नॉर्मल फेस बनाकर बैठ गई। आदित्य ने उसे लिटा दिया और फिर खुद भी उसके साथ ही वहां साइड में लेट गया, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा थका हुआ फील कर रहा था। उसे अपने साथ लेटते देखकर सुनैना भी उसी की तरफ ही घूमकर लेट गई और उसने आदित्य की कमर में अपना हाथ डाला और उसके एकदम करीब हो गई। आदित्य ने भी उसी तरह लेते हुए उसके हाथ में अपने हाथों की उंगलियां फंसा ली। इतने दिनों बाद एक दूसरे के इतना करीब होकर उन दोनों ने ही तसल्ली से आंखें बंद कर ली। इन सब के बीच आदित्य अनय को इस बारे में बताना भूल गया था और वो जब हॉस्पिटल आया तो उसे पता चला कि सुनैना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है। ये सुनकर उसे खुशी तो हुई और अच्छा लगा कि सुनैना समय पर रिकवर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आदित्य ने उसे इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझा, ये पता चलते ही उसे बहुत दुख हुआ। इसके अलावा आदित्य को इस वक्त विराज की भी बिल्कुल फिक्र नहीं थी और वो बेसमेंट में अब मरा हुआ पड़ा हुआ है। अरविंद फिलहाल उसकी निगरानी के लिए खुद वहां पर है, क्योंकि आदित्य ने ये काम उसे ही सौंपा है, और इसके अलावा उसके पेरेंट्स भी उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने अब तक नहीं किया है। क्रमशः